रात धीरे धीरे शहर पर उतर चुकी थी। हवेली के बाहर लंबा ड्राइववे हल्की पीली लाइटों से जगमगा रहा था। कुछ ही पलों बाद काले रंग की कार हवेली के बड़े गेट से अंदर दाखिल हुई। कार आकर पोर्च के सामने रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर दरवाजा खोला। कार से विश्वनाथ बाहर उतरा। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। सूट थोड़ा अस्त व्यस्त हो चुका था और माथे पर हल्की शिकन थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर हमेशा की तरह शांति पसरी हुई थी। बड़े हॉल में हल्की रोशनी थी। मंदिर की छोटी सी चौकी रखी थी जहां दिया जल रहा था। उसी के पास सोफे पर रत्ना देवी बैठी थीं। उनके हाथ में तुलसी की माला थी और वो धीरे धीरे भगवान का जाप कर रही थीं। राम राम राम। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उन्होंने सिर उठाया। जैसे ही उनकी नज़र विश्वनाथ पर पड़ी, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आ गए बेटा? विश्वनाथ ने बस हल्का सा सिर हिलाया। वो कुछ कदम आगे आया। रत्ना देवी ने माला को धीरे से अपनी गोद में रखा और बोली, बैठो। उन्होंने पास वाले सोफे की तरफ इशारा किया। आज बहुत थके हुए लग रहे हो। विश्वनाथ कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीरे से आकर सोफे पर बैठ गया। लेकिन उसके चेहरे पर वही खामोशी थी। रत्ना देवी कुछ पलों से देखती रहीं। माँ होने के नाते वो अपने बेटे की हालत समझ रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। विश्वनाथ ने थके हुए अंदाज में उनकी तरफ देखा। क्या बात है माँ? रत्ना देवी ने पास रखी टेबल से एक लिफाफा उठाया, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। विश्वनाथ के चेहरे की मांसपेशियां जैसे अचानक सख्त हो गईं। रत्ना देवी ने लिफाफा खोला और उसमें से एक फ़ोटो निकाली। वो बड़े उत्साह से फ़ोटो उसकी तरफ पढ़ाते हुए बोली, देखो कितनी सुंदर है, बहुत अच्छे घर की लड़की है, पढ़ी लिखी भी है और संस्कारी भी। फिर वो जैसे उस लड़की की तारीफ़ों की झड़ी लगाने लगी। उसके पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं और लड़की भी बहुत समझदार है, मुझे तो पहली नज़र में ही पसंद आ गई। लेकिन विश्वनाथ फ़ोटो को देख भी नहीं रहा था, वो बस चुपचाप सामने फर्श को देख रहा था। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, माँ। उसकी आवाज़ में थकान थी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? रत्ना देवी थोड़ा चौंकी। विश्वनाथ अब उनकी तरफ देखकर बोला, मेरी उम्र नहीं रही इन सब चीज़ों की और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी है। उसने थोड़ा रुककर कहा, फिर भी आप हर बार यही क्यों करती हैं? रत्ना देवी का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। उन्होंने फ़ोटो धीरे से टेबल पर रख दी, फिर बहुत शांत आवाज़ में बोली, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। हॉल में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। रत्ना देवी की आंखों में हल्की नमी आ गई थी। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा तुम पहली बातें भूल जाओ और फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करो। विश्वनाथ की आंखों में अचानक गुस्से की चमक उभरी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। रत्ना देवी आगे बोली, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे अकेले नहीं कटनी चाहिए। उन्होंने मंदिर की तरफ देखते हुए कहा, और जब मैं भगवान के घर जाऊँगी और वहाँ तुम्हारे पिताजी से मिलूँगी, उनकी आवाज़ भर्रा गई, तो क्या कहूँगी उनसे कि हमारा बेटा पूरी ज़िंदगी अकेला रह गया। विश्वनाथ की मुट्ठियां भींच गईं। कुछ सेकंड तक उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उसका सब्र टूट गया। वो अचानक खड़ा हो गया। बस माँ, उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई, अब नहीं। रत्ना देवी चुप हो गईं। विश्वनाथ ने गुस्से में कहा, मुझे किसी लड़की से नहीं मिलना है और ना ही शादी करनी है, कभी भी नहीं। उसने टेबल पर रखी फ़ोटो की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। फिर बिना कुछ कहे वो मुड़ा और तेज़ कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। रत्ना देवी वहीं खामोश बैठी रह गईं। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऊपर विश्वनाथ तेजी से अपने कमरे में पहुंचा। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर गया और अगले ही पल थड़ाम, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। कमरे में हल्की अंधेरी रोशनी थी। विश्वनाथ ने गुस्से में अपना कोट उतारकर कुर्सी पर फेंक दिया। फिर उसने टाई ढीली की और बालों में हाथ फेरते हुए कमरे में टहलने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा और कड़वाहट साफ दिखाई दे रही थी। माँ भी ना, वो खुद से बड़बड़ाया, ज़रा भी समझना नहीं चाहती। वो अचानक रुक गया। उसकी आंखों में नफरत सी चमक उठी। शादी, उसने लगभग थूकते हुए कहा, मुझे इस नाम से भी नफरत है। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर हवेली का बगीचा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने जैसे पुराने दृश्य घूम रहे थे। उसने दांत भींच लिए। लड़कियां, उसकी आवाज़ भारी हो गई, इनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। उसने कड़वाहट से हंसी, दो दो शादियां कर चुका हूं मैं, क्या मिला मुझे? उसकी आंखों में दर्द की झलक उभरी। हर बार सिर्फ धोखा। उसने मुट्ठी दीवार पर दे मारी, थप। कमरे में आवाज़ गूंज गई। कुछ पल तक वो वहीं खड़ा भारी सांसें लेता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और नफरत
सब एक साथ दिखाई दे रहे थे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी के पुराने जख्म बहुत जल्द फिर से खुलने वाले थे, और इस बार उन जख्मों का नाम था शामली। हॉल में अब फिर से वही सन्नाटा फैल गया था। रत्ना देवी अभी भी सोफे पर बैठी थीं। टेबल पर वही लड़की की फोटो पड़ी थी जिसे वो कुछ देर पहले बड़े उत्साह से विश्वनाथ को दिखा रही थीं। उन्होंने धीरे से फोटो उठाई और कुछ पल तक उसे देखती रहीं, फिर गहरी सांस लेकर बोली, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। उनकी आंखों में अब एक अजीब सी दृढ़ता आ गई थी। मैं अपने बेटे को पूरी जिंदगी ऐसे अकेले नहीं रहने दूंगी। उन्होंने धीरे से भगवान की तरफ देखा और माला हाथ में उठा ली। विश्वनाथ की शादी तो मैं कराकर ही रहूंगी, चाहे उसे कितना भी समझाना पड़े। तभी अचानक टेबल पर रखा फोन बज उठा। ट्रिन ट्रिन, रत्ना देवी ने थोड़ा चौंक कर फोन उठाया। हेलो, फोन की दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आई। कुछ सेकंड तक रत्ना देवी ध्यान से सुनती रही, फिर अचानक उनके चेहरे पर हैरानी उभरी और अगले ही पल वो मुस्कुरा उठी। अरे तुम, उनकी आवाज में अचानक खुशी आ गई। कितने साल बाद फोन किया बेटा, वो थोड़ा आगे झुककर बोली। तुम कब आ रही हो शहर में? दूसरी तरफ से जवाब सुनकर रत्ना देवी की खुशी और बढ़ गई। सच में? कल, उन्होंने तुरंत कहा। तो फिर सीधा हवेली आना, फिर उन्होंने हल्की उम्मीद भरी आवाज में कहा। बेटा, तुमसे एक काम भी है, कुछ पल रुककर उन्होंने कहा। तुम ही विश्वनाथ को समझा सकती हो, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, शायद तुम्हारी बात वो मान जाए। फोन के उस पार से जैसे सहमति मिली, रत्ना देवी के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फोन कट गया। रत्ना देवी ने फोन मेज पर रखा, फिर धीरे से भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। अब देखना, सब ठीक होगा।